निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। कितना समय हमारे पास? ओके तो आज हमारा परम भाग्य है कि आज नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है। नित्यानंद प्रभु श्री बलराम जी के अवतार हैं और हमारे पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी विराजमान हैं। तो ये जो बलदेव जी हैं ये श्री कृष्ण भगवान के सबसे प्रथम अवतार हैं। जो छह प्रकार के अवतार हैं उसमें से लीला अवतार के प्रकार में इनका वर्गीकरण होता है। और केवल श्री कृष्ण भगवान के लीलाओं का विस्तार करने के लिए ही बलराम जी का प्रकट्य होता है। आपको सबको हिंदी समझता है ना? तो इसलिए बलराम जी का ऐसा वैशिष्ट्य है कि बलराम जी पांचों रस में भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस में स्वयं वृंदावन धाम बन जाते हैं, भगवान का पीताम्बर बन जाते हैं, भगवान का आसन बन जाते हैं, भगवान की जितनी वस्तुएं हैं सब वो खुद बन जाते हैं। फिर दास्यता करते हैं उनकी, उनके चरण दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके मित्र भी हैं, उनके साथ खेलते भी हैं और बड़े भाई हैं इसलिए वात्सल्य भी है उनके अंदर, उनकी रक्षा भी करते हैं। माता जो है बोलती है दाऊ जी तुम बड़े हो, इसको जमुना के अंदर जाने मत देना, राक्षस वगैरह आएंगे तो रक्षा करना। इस तरह से माता भी वात्सल्य से उनको वात्सल्य भरी आज्ञा देती है। और एक विशेष बात ऐसी है कि गोपी के रूप में भी वो सेवा करते हैं, राधा रानी के छोटे बहन के रूप में अनंग मंजरी जिसका नाम है उसके रूप में जन्म लेते हैं। उसी समय जिस समय बलराम जी के रूप में है उसी समय अनंग मंजरी के रूप में भी रहते हैं और राधा रानी की श्रृंगार रस में सहायता करते हैं, मदद करते हैं, मधुर रस में उनकी सेवा करते हैं। ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो एक ही व्यक्ति पांचों रस में एक ही साथ भगवान की सेवा करे। ऐसे अद्भुत बलराम जी हैं और उनका व्यवहार भी बहुत अद्भुत है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते ऐसे कार्य कर सकते हैं, इसलिए उनको अवधूत कहा गया। अवधूत यानी ये कभी कुछ करेगा उसका भरोसा नहीं उसका अवधूत कहते हैं, मतलब हमारी भाषा में लोकल भाषा में। तो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ अद्भुत आपको करते हुए दिखाई दिए तो आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। ये वारुणी पीते हैं। वरुण देव ने अपनी कन्या को जो उनका नाम वारुणी है उनकी सेवा में भेज दिया तो वारुणी वो क्या कहते हैं उसको, मधु होता ना, मधु हनी, वैसा एक द्रव्य जो है वो पेड़ के पत्तों में से निकलता है ऐसे बाहर और उसको बलराम जी सेवन करते हैं और प्रेम के नशे में चूर हो जाते हैं और फिर लीला करते हैं। ऐसा उनका अद्भुत व्यक्तिमत्व है। और बलराम जी जो है आधार हैं। हाँ, बलराम जी कैसे हैं? बलराम जी आदि गुरु हैं, भगवान के प्रथम अवतार होने के नाते उनकी कृपा प्राप्त किए बिना श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, उनको लांघकर आगे नहीं जा सकते। जब वो कृपा करेंगे तो ही कृष्ण की कृपा होगी, इसलिए बलराम जी पहले हैं बाद में कृष्ण हैं। हमारी वृंदावन में भी प्रभुपाद जी ने रमण रीति में कृष्ण बलराम का विग्रह स्थापन किया और आज भी वहां पे सब लोग जानते हैं नंबर वन इन कमांड बलराम जी, मतलब सबसे पहला जो अधिकार है जिसका वो बलराम जी का है। और कोई किसी को समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई प्रश्न है, बलराम जी के पास जाओ, अपना समस्या उनके पास सुपुर्द करो, फिर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। कोई भी कष्ट आपको हो, बलराम जी के पास जाओ, बलराम जी आपको उस समस्या का समाधान देंगे ही, और बल भी देंगे साथ में, शक्ति भी देंगे। हाँ, बोल दाओ शक्ति दाओ, ऐसे बलदाव जी हैं। क्योंकि भौतिक बल यानी कि शरीर का बल है ना, दो ये बल, मन का बल, बुद्धि का बल और आत्मा का बल, ये सारा बल जो है वो बलराम की ओर से आता है। यानी कि जो भी बल के रूप में आप जानते हैं, कहाँ का बल होना चाहिए, भाई 4 फुट का आदमी लेकिन मन में इतना बल है उसके कि 50 लोग को भी भिड़ सकता है, तो एक होगा शरीर का, हुआ शरीर का बल, और एक होता है मन का बल। हाँ, अपने मराठे कैसे थे पुराने इतिहास में, वो राजपूत कैसे थे, 5,000 लोग थे, 60,000 की सेना आई, और एंड रिजल्ट क्या मालूम है आपको, 5,000 लोग तो मर गए लेकिन 40,000 शत्रुओं के सैनिकों को मार के मर गए। यानी कि एक एक व्यक्ति ने 8-8 लोगों को मारा, 60,000 लोग आए 5,000 लोग के ऊपर। ये मन के बल के बिना नहीं हो सकता है, ये जो वीरता है ना, वो समर्पण जो है उसके आधार पर 5,000 राजपूतों ने 40,000 को मारा और फिर खुद मर गए। तो शरीर का बल है, ये मन का बल है, बुद्धि का बल है। हमारे शिवाजी महाराज कैसे थे, गनीमी कावा 4-5-10 लोगों को लेके 100-200 लोगों को मार देते थे, दिमाग लड़ाकर, दिमाग का बल और आत्मा का बल। यानी कि भगवान की भक्ति करने के लिए भी बल की आवश्यकता है, उनके बल की सहायता के बिना भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं। अरे जब भी करना है, सुबह जल्दी उठना है, उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, उसके लिए निश्चय चाहिए, उसके लिए त्याग चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब भगवान का जप होता है। अपने आप भगवान का जप नहीं होता है, अपने आप क्या होता है, ये शादी हो गई, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, स्कूल में गए, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, ये सब अपने आप होता है। उसको कहते हैं प्रपंच, और परमार्थ यानी अध्यात्म जो है ना, वो अपने अपने होता है, उसके लिए करना पड़ता है, उसके लिए बहुत बल की आवश्यकता होती है। और वो जो बल है और वो जो कृपा है, वो बलराम जी की ओर से आती है। तो ये जो बलराम जी है, बड़े शक्तिशाली है, तो नहीं बलवान है वो। अभी समय बहुत कम है, लेकिन आपको संक्षिप्त में बताऊंगा जरूर उनका बल कैसा है। वो उन्होंने एक बार, बड़ी लंबी कहानी है वो, अपने शॉर्ट में बताते हैं आपको। वो कृष्ण की पत्नी जाम्बुवती का पुत्र था सांब। हाँ, कृष्ण की 8 पत्नी है ना, 8 पत्नी का एक पत्नी जो थी उसका नाम है जाम्बुवती, वो जाम्बुवान की लड़की थी, उसका पुत्र था सांब। और सांब का लक्ष्मणा के ऊपर, जो दुर्योधन की कन्या थी, उस पर प्रेम हो गया। तो सांब ने क्या किया, लक्ष्मणा के स्वयंवर में जाकर उसको छीन लिया, और जैसे छीन लिया तो कुरुओं ने उन पर आक्रमण किया, उसको अरेस्ट किया और बंदी बना लिया। ये खबर द्वारका पहुंची तो सब लोग ऐसे गुस्से में आ गए कि अभी जाकर आक्रमण करते हैं और कुरुओं को दिखाते हैं उनका क्या औकात है। बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं जाके जरा बात करता हूं उनसे। हर चीज थोड़े गर्म दिमाग से करते हैं, थोड़ा सा मौका देते हैं अच्छी तरह से समझाने बुझाने का। मैं जाता हूं, आप आराम से बैठो, मैं कुछ करके आता हूं। तो सेना लेके जाते हैं, तंबू लगाते हैं हस्तिनापुर के बाहर, तो सब लोग भाग भाग के आते हैं और वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, माला पहनाते हैं, गौरव करते हैं। फिर बलराम जी काम की बात शुरू करते हैं। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर सांबा और लक्ष्मणा को लेने के लिए आया हूँ, आप लोगों ने उसको मारकर बंदी बना लिया है, अच्छा ये होगा कि आप उसको छोड़ दो और लक्ष्मणा के साथ हमको सुपुर्द कर दो, हमारी बहू है वो। क्षत्रिय जब किसी को हाथ लगाता है ना उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो बलराम जी बड़े अधिकार से बात करते हैं, पिंती वगैरह नहीं करते हैं। वो कहते हैं बेहतर यह है कि हमारे सामने आपकी लक्ष्मणा को पसंद किया है, उसको छुआ है, उसको छीना है, आपने सबने मिलकर उसको अकेले अटैक करके बंदी बना लिया, ठीक है कोई बात नहीं, अभी छोड़ दो उसको आप और हमारे पास सपुर्द करो। तो जैसे उन्होंने ऐसे कहा, दुर्योधन का जो है ना अहंकार जागृत हो गया, उसने बहुत बुरा भला बताया बलराम जी को। उन्होंने कहा कि आप तो ग्वाल है, वो सब आपका जो राजदंड है ना वो हमारे वजह से आपको प्राप्त हुआ है। अब तो गाय चराने वाले हो, आपको राजा का सर जो है हमारे वजह से प्राप्त हुआ है, ऐसे बोल के वो निकल जाता है। और तब बलराम जी को बड़ा गुस्सा आता है। तो बलराम जी क्या करते हैं, आक्रमण नहीं करते, आमतौर पर क्या करते हैं, सेना आक्रमण सब योद्धाओं को मारते थे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने अपने हल का आह्वान किया और हल की नोक को जमीन पर ऐसा मारा कि जमीन से, पृथ्वी से पूरे हस्तिनापुर को अलग कर दिया। कैसे, नोक पर खाली, जैसे ये डंडा लिया मैंने ऐसे, इसके डंडे के ऊपर पूरा हस्तिनापुर, ऐसा हल के नोक पर पृथ्वी से अलग करके पूरे हस्तिनापुर को ऐसा लटका लिया उन्होंने। और हवा की गति से वो लटकाया हुआ हस्तिनापुर लेके गंगा जी में डुबाने के लिए वो चले गए, जा रहे थे। मतलब अभी आप सोच रहे हैं, वो हस्तिनापुर सब लोग हैं, दुर्योधन, भीष्मदेव सब लोग, कौरव, पांडव, उनकी पत्नियां, उनके महल, उनके उपवन, उनके बगीचा, वो सब कुछ है उसके अंदर। और अचानक अगर हवा की गति से आपके देश को उठाकर को ले जाते हो तो कैसा अवस्था होगा, सब लोग हाय हाय करने लगे, हाँ चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि बहुत एक झटके से हुआ, कुछ समझ में आने के पहले ही हो गया। भूकंप में क्या होता है, पृथ्वी वही होती है, दो भंग टुकड़े होते हैं, बीच में गड्ढा पैदा पैदा होता है, लेकिन पृथ्वी ऐसे देश आगे जाता नहीं कहीं, ये पूरा देश के देश आगे जा रहा है। तो फिर सब कुरु जो है ना, भीष्मदेव, द्रोण, सभी कुरु लोग हैं, वो भाग के आते हैं, वो जो हवा में हस्तिनापुर है ना उसके कोने में आ जाते हैं। और क्या करते हैं मालूम है, सबसे पहले लक्ष्मणा, उसके बाद सांब, उसके बाद खुद ऐसे उनको देख के अच्छा लगना चाहिए ना। अभी पहले दुर्योधन सामने आ गया तो बाण मारेंगे, या तो उसको डुबा देंगे या तो फेंक देंगे उसको, इसलिए लक्ष्मणा को सामने करते हैं, उसके बाद सांबा को खड़े करते हैं उसके पीछे, और उसके भी सब लाइन से उसके पीछे आते हैं, हाथ जोड़कर, महाराज माफी चाहते हैं, हमने तो ऐसे ही मजाक में कुछ कहा था, आपने बहुत गंभीरता से लिया उसको हमको माफ कर लीजिए, देखो लक्ष्मणा को लेके हम सामने आ ही गए हैं। तो फिर भगवान जो है वो हल से उठाया हुआ जो हस्तिनापुर है उसको अपनी जगह पर रख देते हैं। तब ये, तभी तो आकाश में थे ना वो, फिर जमीन पे आ जाते हैं, फिर उसको छोड़कर फिर बाहर आते हैं और लक्ष्मणों के, भगवान के चरणों में गिरते हैं। और भगवान बड़े रुबाब से लक्ष्मणा को, सांब को लेकर द्वारका चले जाते हैं, और साथ साथ डाउरी भी लेके आते हैं, दहेज भी लेके आते हैं, कई हजार घोड़े, कई कई सैकड़ों रथ, कई सैकड़ों हाथी और जेवर सब रेडी कर करके आते हैं। तो आचार्य लोग बताते हैं कि उनको भी बलराम जी का बल देखने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने उनका जानबूझ के अपमान किया था। उनको भी सांबा को देख के बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि सांबा का इतना शौर्य था कि लक्ष्मणा को जब छीना उसने, तो सभी योद्धाओं के साथ में उसने अकेले युद्ध किया, तब उसकी वीरता देखकर उनको बड़ा पसंद आया था वो, कि ऐसा दामाद होना चाहिए, इतने बड़े महारथी उनको अकेला लड़ रहा है, फिर भी वो हावी होकर उसको कैदी बना देते हैं। तो उनका मन तो उस पर आ ही गया था, लेकिन साथ में बलराम जी का भी पराक्रम देखने की उनकी इच्छा थी। बलराम जी ने पूरे पृथ्वी से हस्तिनापुर को अलग करके अपना बल दिखाया। उसके बाद में, ये तो शायद उसके पहले की बात है ये, या उसके बाद में हो सकता है, आई डोंट नो। रुक्मी को भी मारा था, इसके बाद में मारा के पहले मारा था, बाद में होगा शायद। तो रुक्मी ऐसा था, रुक्मिणी का भाई था वो, मतलब बलराम जी के भाभी का भाई। तो कृष्ण भगवान, बलराम, कृष्ण भगवान जो रुक्मिणी का शादी हरण करके लेकर जा रहे थे उनको, तब इसको मारने वाले थे, लेकिन बलराम जी ने रोका उनको, बोला अरे अरे भाभी का भैया भैया, ये हमारा समधी हो गया ना, वो कैसे मारते हो तुम उसको, भाभी को कैसा लगेगा, हाँ कुछ सोचा उसके बारे में, नई नई पत्नी तुम्हारी, पहली वाली पत्नी, और उसकी शादी अभी आप होने वाली है आपसे, आप उसको लेके जा रहे हो और उसके सामने ही भाई का वध करोगे, कैसे चलेगा, मत मारो उसको। तो भगवान ने उसके बाल बाल नोच लिए, इधर उधर मूछ वूछ उड़ा लिया उसका बोला जा अभी तू, तो वो अपने देश वापस नहीं गया, उसने वचन लिया था, तो उधर ही बस गया वो, और एक नगरी बनाया उसने। बाद में भगवान बलराम को एक बार उन्होंने जुआ खेलने के लिए बुलाया, जुआ मतलब दूध क्रीड़ा करने के लिए बुलाया, चौसर का खेल खेलने के लिए बुलाया। तो बलराम जी चौसर खेलने बैठे तो उधर काशीराज भी था, कलिंगराज भी था, मतलब जहाज की जगन्नाथपुरी बोलते हैं उसको, कलिंगराज, काशीराज, रुक्मी और उसका क्या कहते हैं उसको, चांडाल चौकड़ी सब लोग चौसर खेलने लगे और हर बार बलराम जीतते गए बलराम जी, लेकिन उन्होंने ऐसा हल्ला मचाया कि हार गए हार गए हार गए हार गए। तभी आपको क्या मालूम, आप तो हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हम लोग चौसर यहाँ खेल रहे हैं, इधर क्या हो रहा है आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ये बोल रहे हैं हार गए हार गए, तब लोग हा हा हंस रहे। एक बार हो गया, फिर दोबारा खेलने लगे, फिर जीत गए, फिर उन्होंने हल्ला मचाया हार गए हार गए हार गए, तो फिर उन्होंने सब लोग हंसने लगे दांत दिखाकर। तीसरी बार हो गया, चौथी बार हो गया, चौथी बार जब जीते और फिर भी हल्ला मचाया कि हार गए, उन्होंने गदा उठाया एक धन करके दिया रुक्मी के सर पे और रुक्मी का सर फूट गया, रुक्मी का उधर को धराशायी हो गया। हाँ, किसको पता नहीं चला, अभी तो हंस रहे थे, अभी तो एकदम गए काम से हाँ तमाम हो गया काम उनका। और ये देखकर जो कलिंगराज और काशीराज थे ना, वो भागने लगे, अभी कुछ खैर नहीं हमारी। तो बलराम जी ने गदा लेकर उनका पीछा किया और काशीराज के दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे, दांत तोड़ के घसे में डाल दिए उसके। हाँ, हमारे मराठी में बोलते ना गांव में, दांत घसा घात ले, वैसा ही कर दिया भगवान ने। मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने को, बहुत ही मजा आता है। दांत दिखा रहा है, हाँ दांत दिखा रहा है, जानबूझ के गलत हंसती दांत, मेरा हंसी मजाक उड़ा रहा है, दांत दिखा रहा है, दांत ही तोड़ दिया पूरा कंप्लीट, जवानी में बुढ़ा कर दिया उसको। और फिर कलिंगराज भाग रहा था जो, वो भी हंस रहा था, उसके हर एक हाथ और पांव की हड्डी तोड़ दी उन्होंने, पूरा अपाइज बना दिया उसको, जा अभी जिंदगी भर हंसते रहना। अरे ऐसे बलराम जी है, इतना पावर है उनके अंदर, पावर का गर्व नहीं उनको, थोड़ा सहन कर लेते बहुत पहले पहले, पहले भी आए थे हस्तिनापुर में तो विनती किया था दे दो वही, हाँ अधिकार से, लेकिन पहला चांस दिया था कि देने को मौका दिया था उन्होंने। इधर भी दो दो तीन बार हंसने का मौका दिया कि भाई सुधरेंगे, नहीं सुधरे तो दे दिया अच्छी तरह से। हाँ ऐसे बलराम जी। अरे वो रोमर्षण सूत था, रोमर्षण सूत सूत का, रोमर्षण सूत जो है वो सूत गोस्वामी के पिताजी हैं, वो तो पृथ्वी के कल्याण के लिए बहुत हजारों साल का यज्ञ करने के लिए, कथा करने के लिए बैठे थे। बलराम जी आए अपना परिक्रमा करते करते, सभा में प्रवेश किया तो ये उठे नहीं, सब लोग उठे, दंडवत किया तो ये अपने आसन पे बैठे रहे। तो बलराम जी को लगा कि अच्छा नहीं है ये तो आसन पे बैठा हुआ है, सब लोग उसका सुनने वाले हैं, उसका आचरण देखने वाले हैं, अगर मैं आया और वो नहीं उठा तो जनता के लिए अच्छा आदर्श नहीं है, वो एक गलत आदर्श स्थापन हो जाएगा कि चलो भाई भगवान भी आए कथा में तो हम लोग बैठे रहेंगे और बोलते रहेंगे। नहीं, कथा में अगर भगवान आते हैं या गुरु जी आते हैं या और वरिष्ठ वैष्णव आते हैं तो कथा करने को कथा रोक कर उठना चाहिए, वंदन करना चाहिए, फिर दोबारा उनकी आज्ञा लेकर कृपा लेकर फिर बैठना चाहिए, अगर वो बोलेंगे बैठ जाओ तुम तो बैठना चाहिए। तो ये तो बैठे रहे, ना वंदन किया ना देखा उनको, कुछ नहीं किया। तो बलराम जी ने क्या किया, एक तिनका उठाया, तिनका, और तिनका उठाकर उसको गले पे लगाया, वो मर गया। वो इतना बल है उनके अंदर, केवल तिनका उठा के गले को लगाया तो आदमी मर गया। वो साधु लोग बोलने लगे, क्या हाय हाय हाय, हमारा तो आदमी तुमने मार दिया पूरा, इसको तो हमने अपना आयु भी दिया था, अपना लाइफ भी दिया था उसको कि भाई वो जीवित रहे, विश्व के कल्याण के लिए बोले या उद्धार करे लोगों का। तो बलराम जी कहा उनको, दोबारा जीवित कर दो क्या? बोला, नहीं नहीं आपने अभी मार दिया तो क्या कर सकते उसको तो अभी आप उसकी जो जितनी भी कृपा है वो सब उसके बच्चे में डाल दो। तो सूत में उसका सारा शक्ति जो है वो स्थापित कर दिया और सूत जी को बिठाया, फिर सूत जी ने आगे का कथा किया। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको एकदम शॉर्ट शॉर्ट में बड़ा अच्छी अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा उसको बड़ा सब बोल सकते हैं लेकिन टाइम कम है। तो ऐसे बलराम जी है हमारे। अरे एक बार तो जमुना जी के किनारे गए, ऐसा बैठे, वारुणी पिया और बोले, जमुना जी इधर आ जाओ, हमको आपके जल में स्नान करना है, आ जाओ। ऐसे बैठे थे ऐसे हाथ, तो जमुना जी को लगा, अरे क्या नशे वाला आदमी कौन है ये, मैं नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ी जाऊंगी ऐसे, कोई नशा करके पूछा मुझे पुकारेगा तो थोड़ी जाऊंगी मैं उधर। जमुना जी नहीं गई, अपने अपनी वहां से बहती रही। तो भगवान ने हल उठाया और ऐसा झटका दिया जमुना जी के ऊपर, ऐसे अनेक धाराएं बनाई उसकी, क्योंकि नदी को ना अपने पात्र का गर्व होता है, बड़ा पात्र। तो जमुना जी का जो गर्व था वो भगवान ने तोड़ दिया, उसको अनेक छोटी छोटी धाराओं में विभाजित कर दिया और खींचा भी अपनी ओर टुकड़े करके उसके। तो जमुना देवी जो है प्रकट होके भाग भाग के चरणों में गिरी, अरे भगवान मैंने तो आपको पहचाना नहीं, मैं तो समझे आप कोई नशा करने वाले ऐसे ही बैठे हो उधर, माफ करना मुझे, मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपा करना अभी आ जाना जमुना जी में, स्नान करना मेरे में। तो फिर भगवान ने स्नान किया है, इतना बल है उनके अंदर, उनके बल के सामने कौन टिक सकता है। ऐसा धेनुकासुर को फिनाया, उठा दिया तो ऐसा पेट भी मार दे दिया, तो पेट भी गिरा और बाकी सारे पेट भी गिरा दिया उसने। और दोनों ने मिलकर, भाइयों ने ऐसा गधों को सब घुमा घुमा के तमाम कर दिया काम उनका। फिर चाणूर मुष्टिक को बलराम जी ने मारा, चाणूर कृष्ण ने मारा, उनका पराक्रम का क्या कहने, ऐसे बलराम जी थे। लेकिन जब कलयुग में आए नित्यानंद प्रभु बनकर, अक्रोध बनकर आए, सारा क्रोध छोड़कर आए। उनको कहते हैं कभी गुस्सा ही नहीं आया नित्यानंद जी के अवतार में, कभी क्रोध ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जिस भाव में हमारे कृष्ण जी आए हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर, कोई शस्त्र अस्त्र लेकर नहीं आए ना, केवल हरिनाम का लेके आए, सांगो पंगा अस्त्र पार्षदम, अपने दोस्त जो हैं और अपना नाम जो है भगवान का, वही उनका अस्त्र था। तो वो भाव देखकर कृष्ण का भाव चैतन्य महाप्रभु के रूप में उसी भाव को अपना कर आए। लेकिन फर्क क्या है, कृष्ण का जितना भाव है उससे अधिक दयालु भाव बलराम जी का है, उधर भी मारते हैं सबको वो, लेकिन कृष्ण से अधिक दयालु हैं, कृष्ण से अधिक आश्रय देते हैं, कृष्ण से अधिक लोगों को कृपा करते हैं, ऐसे बलराम जी हैं। तो उधर भी ऐसा ही, वो बड़े कृपालु बनकर आए तो ये उनसे भी ज्यादा कृपालु बनकर आए। तो इनकी कृपा ऐसी है कि ऐसा कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु को अगर देखा आपने कि शराब के अड्डे में गए हुए हो तो गलत मत समझना, हर आदमी शराब के अड्डे में जाकर प्रचार नहीं कर सकता है। वही कर सकता है जो बलराम जी स्वयं नित्यानंद प्रभु या उनके उनके कृपा पात्र जो भक्त हैं वही कर सकते हैं। ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में कि नित्यानंद प्रभु अगर वेश्यागृह में दिखाई पड़ते हैं या शराब के अड्डे में दिखाई पड़ते हैं तो ये मत समझना कि जो लोग करने जाते हैं वहां पर वो कर रहे हैं, वहां पर उनका उद्धार करने के लिए जाते हो, ऐसे अद्भुत जीव है वो। तो ये नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु चैतन्य ने बताया, हरिदास ठाकुर के संग जाकर घर घर में जाना और लोगों को विनती करना कि भगवान का नाम लो। तो गए हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु। ऐसे कहा गया है कि गृहस्थों के घर में दरवाजा खटखटाकर उनको बुलाते थे। अब गृहस्थ मतलब क्या, पति पत्नी सब इंद्रियों का भोग कर रहे हैं, परिवार है, पैसा है, सब कुछ है, भगवान में रुचि नहीं है। ऐसे घर घर में जाकर दरवाजा खटखटाकर वो लोगों को जगाते थे और कहते थे कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धनपान, और क्या है वो उसका आगे, बोलो कृष्ण करो करो कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। फिर कुछ गृहस्थ लोग उनके मुंह पर दरवाजा बंद करते थे। अगर बलराम जी के टाइम पे होते तो क्या करते, एक ही गदा धन करके देते थे, दरवाजा भी बंद और आदमी भी बंद। लेकिन ये अवतार में उनका ये मूड नहीं था। एक बार दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा खोलता था, उसके बाद में वो हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान बलदेव हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, कृष्ण माता कृष्ण पिता कहो कृष्ण, कृष्ण का नाम लो, कृपा करके नाम लो। फिर उसके मुंह पर दरवाजा बंद हो जाता, फिर दोबारा दरवाजा खटखटाते थे। और दूसरी बार जब दरवाजा खुलता था तो दंडवत प्रणाम करके बात करते थे, पूरा साष्टांग दंडवत, आप मेरे मुंह पर 50 बार दरवाजा बंद कर सकते हो और करो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लो, कृपा करके भगवान का नाम लो, कृष्ण के बारे में बोलो, वही तुम्हारी माता है, वही तुम्हारा पिता है, वही तुम्हारा सब जीवन का सर्वस्व है। इतना करुणा, इतनी दया और इतनी माफी और इतना संयम, और फिर वो लोग धीरे धीरे भगवान का नाम लेते थे। तो ऐसे एक बार जा रहे थे रास्ते से, तो दो भयंकर राक्षसी व्यक्ति के मतलब प्रवृत्ति के लोग जो है वो शराब के नशे में चूर होकर पूरा हाहाकार मचा रहे थे। क्या क्या कर रहे थे वो, दुकानें बंद हो रही थी बाजार की। हाँ, वो दोनों मिलकर रोज, उनका कोटा था कि इतने औरतों पर रेप करना है, इतना घर को आग लगाना है, इतना घर लूटना है, इतना दुकान में जाकर मारामारी करना है, इतने लोगों को पीटना है, इतना शराब पीना है। ब्राह्मण थे वो, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी बहुत भयंकर पापी हो गए थे वो, और निर्दयी थे बहुत, कुछ भी करते थे। तो ऐसा ही उनका सेशन चल रहा था मतलब उठे अपने सुबह, दारू वारू पी लिया और नशा होकर दोनों निकले मार्केट में अपना धंधा करने के लिए रोज का। किसी को पीट रहे, किसी को मार रहे, किसी को दुकान में आग लगा रहे, किसी को कुछ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, खुद में झगड़ा कर रहे हैं, और क्या क्या मतलब इट्स अ वेरी, हमारे बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे सीन देखे हैं हमारे गली में, और हम अपने घर में बैठे हुए हैं और गली में सीन चल रहा है, फिर भी हमारा इधर छाती धड़ 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 होता था देख के भी। कोई ट्यूबलाइट फेंक रहा है, कोई बॉटल फेंक रहा है, कोई चाकू फेंक रहा है, कोई तलवार फेंक रहा है, कोई पीछा कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गिर रहा है, कोई खून गिर रहा है, सब सीन हमने बचपन में बहुत देखे। तो जब ऐसा होता है ना कभी, तो लोग भागने लगते हैं, लोग भागते हैं, औरतें चिल्लाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, बूढ़ा लोग गिर जाते हैं, उनको लात मारते हैं, दुकान बंद हो जाते हैं, ऐसा बहुत सारा भयंकर सीन चल रहा था। तो नित्यानंद प्रभु जी वहां पर जा रहे थे, हरिदास को बोले ये लोग कौन है, तो कहते हैं बहुत भयंकर राक्षसी जैसे लोग हैं ये, यहाँ के बहुत कुप्रसिद्ध गुंडे हैं लोग। तो बोलते हैं इनको भक्त बनाना चाहिए देखो उनका थिंकिंग कैसा है, आपको लगेगा पागल है ये। उनका थिंकिंग ऐसा है कि हमारे जो प्रभु हैं महाप्रभु चैतन्य, वो सबका उद्धार करने के लिए आए हैं, अपना नाम का आश्रय लेकर सबको माफ करने के लिए आए, किसी को मारने के लिए नहीं आए, वो शस्त्र लेकर आए नहीं। जितने पतित लोग हैं उतना उनको उद्धार करना है, और अगर इनके जैसे लोग भक्त बनेंगे, हरि नाम को स्वीकार करेंगे, तो हमारे महाप्रभु जी का नाम होगा। भाई किसको बनाया भक्त, हाँ अच्छे लोग को बना सकते तो ठीक है, अच्छी बात है ना, लेकिन जो सबसे गिरे हुए हैं उनको अगर नाम दिया इनका, उन्होंने लिया भी और वो भक्त बने भी, अरे तो विश्व भर में इनका नाम होगा। ये उनके माइंड है, ये मन में विचार चल रहा है उनका। ऐसा नहीं कि चलो हम कुछ स्टंट करते हैं हम लोग फेमस बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये आजकल का फिल्म स्टार कैसा होता है, कुछ भी करके अपना लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं, ये उनका मूड नहीं था। और हरिदास जी बोले अरे मच जाओ, अरे ये तो बहुत खूंखार गुंडे हैं, ये तो बहुत खतरनाक है, तो फिर भी पहुंच गए उनके पास। और बोलते हैं क्या बोलते हैं, कृष्णा क्या,
कृष्ण माता
कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण। ये किसको बोल रहे हैं, शराब से नशे में चूर जो पागल जैसे हो गए थे वो गुंडे, उनको बोल रहे हैं। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, हमें उपदेश करने की हिम्मत, ऐसा करके उसका मटका उठा के भागने लगे। तो वो दिन तो भाग गए हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, और शाम को मिल गए महाप्रभु को रिपोर्ट देने के लिए। तो ठाकुर हरिदास ने रिपोर्ट दिया कि ऐसा ऐसा हमारे नित्यानंद प्रभु ने आज बहुत भयंकर काम किया, बाल बाल बच गए हम लोग, देखो हाँफते हाँफते आ रहे हैं वहां से, भागते भागते बच गए आज, इनके साथ में जाना मतलब बहुत खतरनाक चीज है। तो फिर दूसरे दिन भी निकले, उन्होंने उस दिन निश्चय कर लिया था कि इन दोनों को भक्त बनाना ही है। अगर हरे कृष्ण आंदोलन को, महाप्रभु जी के मिशन को आगे बढ़ाना है, तो ये दोनों को भक्त बनाना ही है बस। अरे नित्यानंद प्रभु ने ठान लिया तो उसको कौन रोक सकता है। दोबारा पहुंचे उनके पास, हरिदास ठाकुर रोक रहे हैं, मत जाओ, लेकिन ये पहुंच गए उनके पास, बोलो, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि लोग देख रहे हैं और लोग तारीफ करेंगे, कितनी हिम्मत कर रहे हैं, कल तो मरते मरते बच गए थे फिर आज आ गए, अभी ऐसा लोग देख रहे हैं तमाशा, ऐसा नहीं है। उनको जगाई मदाई के प्रति हृदय से करुणा थी, और उस करुणा और प्रेम के साथ उन्होंने उनको हाथ जोड़कर विनती किया। जो व्यक्ति ने एक हल्के नोक पर पूरा हस्तिनापुर को पृथ्वी से अलग करके गंगा जी में फेंकने जा रहे थे, वो इतना बल है उनके अंदर कि जगाई मदाई किस झाड़ की पत्ती है, फिर भी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। क्योंकि उनका कार्यक्रम क्या है, उनको समाप्त करने का नहीं है, उनके हृदय को परिवर्तन करने का कार्यक्रम है, उनका प्रोजेक्ट यह है। समाप्त करना आसान होता है, परिवर्तन करना डिफिकल्ट होता है। तो जैसे ही उन्होंने विनती किया तो बोले, अरे इतनी हिम्मत, कल इनको भगाया था आज फिर आ गए। तो शराब का जो मटका लिया था हाथ में वो ऐसा उठाया और दे दना करके सर पे मार दिया उनके। प्रेम से नहीं मारा था, जान से मारने के लिए मारा था। और वो मार लगते ही खून बहने लगा पूरा मुंह पर ऐसा, और वहीं गिर गए नित्यानंद प्रभु। क्या जरूरत थी उनको गिरने की, वो पात्र उन पे सर पे लगने के पहले ही वो उसको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी सहन किया। देखो कैसा होता ना, समझो अभी मैं समझो प्रभु जी आपने 10 लोग को एक साथ मार सकते हैं, समझो उतना उनके पास कला भी है और बल भी है और हिम्मत भी है, लेकिन 10 लोगों को मारने के बदले में एक बच्चा आके उनको तमाचा मार के जाता है और वो कुछ भी नहीं करते हैं, उसका मतलब क्या डरपोक है वो? नहीं, वो कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहते। उनकी दया है, उनका करुणा है, उनका निश्चय है कि चलो और एक मार लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन चाहता हूँ तो ऐसे 10-10 बड़े शरीर के आदमियों को सफाचार कर सकता हूँ। तो बलराम जी का बड़प्पन किसमें है? अरे एक चुटकी में समाप्त करने की शक्ति है, उसके हाथ का मटके का प्रहार सहन कर रहे हैं। क्यों सहन कर रहे हैं? इसको भक्त बनाना है, इसलिए उसका अपराध भी सहन कर रहे हैं, उसका मृत्यु के लिए किया गया प्रहार भी सहन कर रहे हैं, इतना खून बह रहा है वो भी सहन कर रहे हैं, बेहोश से होकर गिर गए वो भी सहन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं गिर गया अभी तो उठा के मार रहा है, ऐसा भी नहीं, गिरे हुए हैं। लेकिन जब भी भगवान के भक्त का अपराध होता है तो भगवान स्वयं चुप नहीं बैठ सकते हैं। भगवान का भक्त शायद सहन लेगा लेकिन भक्त नहीं, भगवान नहीं सहन सकते। तो तुरंत खबर पहुंची महाप्रभु को कि नित्यानंद प्रभु पर किसने किया था, मदाई ने हमला किया था। तो उधर पहुंच गए महाप्रभु चैतन्य और आंखों में अंगार था उनके, गुस्से से क्रोध से चेहरा लाल हो गया था उनका, और उन्होंने आने देखा ताओ चक्र चक्र करके बुलाया, और तत्काल उनके हाथ में जो अवतार में उन्होंने शस्त्र लेने का और अस्त्र लेने का नहीं लेने का निर्णय किया था, फिर भी महाप्रभु जी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने तत्काल तत्क्षण चक्र को आह्वान किया और उनके उंगली पर हजारों सूर्यों के जैसा प्रकाशित चक्र जो है प्रकट हो गया, और वो अभी उसको चलाने वाले थे उनका सर काटने के लिए, तभी बेहोश जैसे गिर गए थे ना खून में लथपथ होकर, उठ गए नित्यानंद प्रभु और जाके चरणों में गिर गए महाप्रभु के, और चरण ऐसा पकड़ लिया दोनों ऐसा, महाप्रभु मत मारो इनको, मत मारो, अगर इनको आप मारोगे तो कलयुग के सभी लोगों को मारना पड़ेगा आपको, क्योंकि सभी लोग कलयुग के छोटे बड़े जगाई मदाई है हम सब लोग। आपका अवतार तो कृपा करने के लिए हुआ है, आपका अवतार इनको भक्त बनाने के लिए हुआ है, ऐसे आप मारेंगे तो आपका अवतार का कार्य कैसे पूर्ण होगा? ऐसे कौन विनती कर रहे हैं? जगाई मदाई विनती नहीं कर रहे हैं जिनको मारने को आ रहे हैं, जो बेहोश होकर गिर गए हैं, बेहोश जैसे होकर गिर गए हैं, वो अपने आप को संभाल कर उठकर चक्र को निकलने के पहले ही कदमों में गिरकर कदम पकड़कर चिल्ला रहे हैं, मत मारो इनको। तो ऐसे लिखा है शास्त्र में कि भगवान का चक्र उनकी उंगली छोड़कर निकल नहीं सका, भगवान का क्रोध और भगवान का चक्र इस शक्ति को नित्यानंद प्रभु की करुणा ने परास्त कर दिया। इतनी करुणा कि भगवान का क्रोध भी कुछ नहीं कर सका, उधर चक्र को वापस जाना पड़ा, चक्र वापस चला गया, चक्र भी आश्चर्यचकित हो गया, भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे मैंने आदेश दिया और चक्र नीचे उतर नहीं पाया, इतना प्रभाव किसका हो सकता है? प्रभाव है नित्यानंद प्रभु की कृपा का, करुणा का प्रभाव है वो। और ये देख भगवान का अवतार देखा उन्होंने, अरे चक्र लेकर आह्वान कर रहे, चक्र चक्र करके मारने वाले हैं, तो जगाए मदाई जो है दोनों गिर गए उनके चरणों में। तो भगवान ने कहा, नित्यानंद प्रभु ने कहा, माफ कर दो इनको, माफ कर दो, इनको पश्चाताप हो रहा है, ये समझ गए अभी, क्योंकि उन्होंने देखा अपना अवतार कैसा है। हाँ, करुणा अवतार करके आए थे, लेकिन देखा तो डर गए थे पूरे वो, कि अभी दो क्षण में मृत्यु होने वाली थी, इन्होंने बचाया हमको तो हमारा तो बेड़ा तमाम होता था। तो भगवान ने उनको खड़ा किया, बोले एक ही कंडीशन पे माफ करूंगा आपको, वादा करो। किसको दिया? जगाई को बुलाया, मदाई ने हमला किया था ना, मदाई को नहीं बुलाया, जगाई को बुलाया, बोलो जगाई वादा करो कि दुनिया में और कभी पाप नहीं करोगे आज के बाद। तो वादा करते तुरंत, तो फिर मदाई आते हैं, हमको भी माफ करो, नहीं नहीं तुमने तो हमारे नित्यानंद पर आघात किया था। तो नित्यानंद जी उनके लिए भी विनती करते हैं, कोई बात नहीं, बीच में बताने को भूल गया मैं आपको एक बात, कि जब नित्यानंद प्रभु को ऊपर उन्होंने मटके से हमला किया मारने के लिए, तो बेहोश से होकर गिर गए, फिर दोबारा उठे और उनको बोले 50 बार हमला करो मेरे ऊपर, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी, 50 बार मटका लेकर मारो मुझे आप, लेकिन भगवान का नाम लो। कितनी करुणा हो सकती है, हम तो नहीं कर सकते वो ऐसा, क्योंकि हमारे पर हमला किया था, हम हमला करेंगे, एक का जवाब एक से कम देंगे, हो सके दो भी देंगे, ये हमारा स्वभाव है। बाकी जगह सब प्रचार करेंगे, जो भी करेंगे करुणा सब कुछ करेंगे, अपने ऊपर हमला हुआ तो बिल्कुल देंगे उसको। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है मृत्यु का हमला होने पर भी उठकर बोल रहे हैं और मारो, लेकिन भगवान का नाम लो, यही मेरी आपको विनती है। और उसके बाद में फिर महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो मदाई ने जिससे उनको मारा था उसके लिए नित्यानंद प्रभु ने भगवान से सिफारिश की कि भगवान इसको माफ कर दो। आम जो लोग आप बोलेंगे ये इसको मत दो, इसने मुझे मारा था, इसको हटाओ, उसको दो क्योंकि अरे निजी बात है वो, व्यक्तिगत बात है ना वो, लेकिन करुणा की भी कोई सीमा नहीं है नित्यानंद प्रभु की। तो उसके बाद मदाई भी गिर गए चरणों में, उनको भी धमकी दिया गया कि आप माफी तब मिलेगी जब इसके आगे पाप नहीं होगा और भगवान का नाम लिया जाएगा। तो फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा से भगवान ने दोनों को गले लगाया, और दोनों को गले लगाने के बाद में गौरांग महाप्रभु का स्वर्ण कांति, गोल्डन जो स्वरूप था ना, वो पूरा काला हो गया। इनके इतने भयंकर पाप थे, इतने भयंकर पाप थे, इतने भयंकर पाप थे कि बेचारे यमराज भी थक गए थे उधर इनका रिकॉर्ड रखते रखते। यमराज का जितना स्टाफ था ना वो सब परेशान था, बोला हमको रिजाइन करना है, अभी हम काम ही नहीं करना है, इतना काम एक के दो आदमी का काम इतना है कि भाई यमराज का जो इतना गोडाउन था वो सब भर गया, उसमें जमीन में गड्ढे बनाया, उधर भी रिकॉर्ड रखा इनका। अरे रिकॉर्ड रखना इतना मुश्किल है, इसको रिकॉर्ड को संभाल के रखना, उसका पनिशमेंट देना कितना मुश्किल है ना, भाई रिकॉर्ड ही इतना हो गया कि भाई हर एक रिकॉर्ड रखने का काम नहीं है, रिकॉर्ड को पनिशमेंट भी देना है, दंड भी देना है उसका। तो सारा गोदाम भर गया और सारा स्टाफ जो है दोनों के लिए पीछे लगा था, दोनों के कर्म को नोट करने में लगा था, और यमराज के लोग के अंदर जमीन में गड्ढे बना बना कर इनका रिकॉर्ड डाल रहे थे वो लोग। और यमराज खुद परेशान था कि अभी कैसे करें इनका, हाँ इतना बड़ा काम जो है इनका दंड देने का, वो कैसे करेंगे। तो इनके सारे पाप चैतन्य महाप्रभु ने अपने पर ले लिए, न केवल पाप से मुक्त किया बट उनको उसी समय कृष्ण प्रेम दे दिया, ऐसा ऑन द स्पॉट यू नो, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे पाप छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे शुद्ध हो रहे हैं, धीरे धीरे जप कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, अतो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, धीरे धीरे रुचि आसक्ति, ऐसा धीरे धीरे प्रगति हो रही है, अच्छा प्रचार किया नित्यानंद प्रभु ने, अभी आगे डिवोटी बन रहे हैं, अभी उनका दीक्षा भी होने वाला है, ऐसा नहीं। ऑन द स्पॉट पाप मुक्ति, ऑन द स्पॉट कृष्ण प्रेम, कोई अष्ट पद्धति नहीं है उधर बीच में, अधो श्रद्धा साधु संघ बीच कुछ नहीं है, ऑन द स्पॉट ये कृपा है नित्यानंद प्रभु की, ऑन द स्पॉट। अभी भी हमको लगता नहीं ये कैसे हो सकता है, लेकिन यह हुआ है और भगवान ने किया भी है उसको। गले लगाते ही सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो गए और तत्क्षण उनके हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ और भाव विभोर होकर वो नृत्य करने लगे, आंखों से आंसू लेकर अष्ट विकार प्रकट हो गए उनके शरीर के अंदर। तो फिर यमराज को खबर मिल गई, सब देवताओं को खबर मिल गई, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, वरुण, सोम, सभी देवता लोगों को पता चला, अरे भगवान ने कृपा किया, ऐसे महान पापियों को तत्क्षण मुक्त करके अभी प्रेम से विभोर होकर नाच रहे हैं वो। और भगवान ने कहा कीर्तन करो अभी, सबने कीर्तन शुरू किया, उसमें वो नाचने लगे प्रेम से पागल होकर। और भगवान ने कहा कि अभी क्या हुआ, कीर्तन होने के बाद में सारे पाप जो है वो धीरे 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 निकलने लगे और पुनः भगवान का शरीर जो है वो स्वर्ण कांति वाला बन गया। तो भगवान ने कहा कि ये जो पाप है ये हरिनाम कीर्तन के प्रभाव से मुझसे निकलकर अवकाश में जमा हो गए। जो भी कोई आगे जाकर वैष्णव का अपराध करेगा वो जगाए मदाए के पाप जो है वो उसमें प्रवेश करेंगे, ऐसा भगवान ने बता दिया। मतलब क्या हुआ, जब भी हम वैष्णव का अपराध करते हैं ना, वो जगाए मदाए का पाप जो है ना वो हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए यमराज को खबर मिल गई देवताओं की तरफ से। यमराज को यकीन नहीं हुआ कि इतने सारे पाप जो है, इतने सारे पाप एक क्षण में माफ कैसे हो सकते हैं। अरे हो गए, बोलते हो गए। तो अपने क्या भैंसा को बिठाया, मतलब भैंस पे बैठ गए और निकल गए, बोला जल्दी जल्दी चल, ऐसा फास्ट स्पीड में भगाया उसका, उसके मुंह से झाग आया और बेहोश हो गया वो। कौन? यमराज का वाहन जो है ना भैंसा, तो छोड़ दिया उनको। जब भी वो बेहोश हो गया और उसका एक्सीडेंट, मतलब क्या पंक्चर हो गया ना टायर उसका तो वहां से ब्रह्मा जी आ रहे थे अपने स्वान पर बैठकर, हंस में बैठकर। तो ब्रह्मा जी ने उनको अपने में लिफ्ट दे दिया, मतलब बैठो हमारे साथ, हम भी जा रहे हैं उधर ही देखने के लिए, हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। देख रहे तो क्या, सब किस, कोई चूहा जा रहा है गणपति को लेकर, कोई मोर जा रहा है हाँ उसको लेकर, क्या नाम उसका, कार्तिकेय को लेकर, और इंद्र अपने ऐरावत में बैठकर, और सभी अपने अपने वाहनों में बैठकर सब लोग पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। अरे ऐसी कृपा कैसे हो सकती है, देखने के लिए जा रहे हैं। तो इनका भैंसा पंक्चर हो गया, तो फिर वो बैठ गए हंस पर और पूछने लगे भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी ने पूरा स्टोरी बताया उनको, जैसा मैंने आपको बताया। वो स्टोरी सुनकर यमराज जी बेहोश हो गए हंस के ऊपर, उनको यकीन ही नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है। और पूरा कथा सुना, बेहोश हो गए हंस पर, हाँ इमरजेंसी हो गया ना अभी अरे लिया था किसी को लिफ्ट में, हो तो बेहोश हो गया, और आधा जर्नी जो है वो बेहोश अवस्था में पृथ्वी तक चले गए। अभी देवता लोग पृथ्वी पर प्रवेश टच नहीं करते हैं, ऊपर ही रहते हैं। तो कुछ जगह पर आकर वो हंस रुक गया, फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाल कर उनको होश में लाया। देखिए यमराज अपने आंखों से देखो, तो यमराज ने अपने आंखों से देखा कि इतने महाभयंकर पापी जो दिन में इतना पाप करते थे, एक दिन में उतना कहते थे कि पृथ्वी के सारे लोग जीवन भर मिलकर नहीं कर सकते, उतना पाप वो एक दिन में करते थे, उसका सबका रिकॉर्ड यमराज के पास था। और वो दोनों पूरे पाप मुक्त होकर, पूरे कृष्ण प्रेम से संपृक्त होकर नाच रहे हैं, हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने आंखों से देख रहे हैं कि एक प्रेमी भक्त की तरह, एक जो सबसे ऊंची स्तर पर पहुंच चुका है, ऐसे भक्त की तरह दोनों नाच रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, रो रहे हैं, अष्ट विकार, हाँ आंखों से अश्रु, कंपन, रोंगटे खड़े होना, सब कुछ उनके शरीर में प्रकट हो रहा है। यमराज को विश्वास करना पड़ा देखकर, ये सब क्यों हुआ, इनकी क्या योग्यता थी। ब्रह्मा जी का एक दिन भर भी पूरा 311 ट्रिलियन साल भर भी अगर इनको पनिशमेंट देते तो भी इनका पनिशमेंट पूरा नहीं होता। मतलब एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड ट्रांसफर करना पड़ता है इनको, क्योंकि अभी इनका बाकी है। एक ब्रह्मांड का पूरा कालावधि समाप्त हो गया, कितने सारे प्रलय हो गए बीच में, फिर भी इनका पाप का शिक्षा पूरा नहीं हुआ। चलो इनको उधर ले लो, अभी उधर कंटिन्यू करो, हमारा रिकॉर्ड आपको सुपुर्द करते हैं, उनको आगे कंटिन्यू करो। इतना था रिकॉर्ड उनका, वो सारा रिकॉर्ड जो है एक चुटकी में भगवान ने खत्म कर दिया। क्यों? नित्यानंद प्रभु ने विनती किया इसलिए। तो भगवान तो उनको काटने के लिए आए थे उधर, और काट भी लेते दो क्षण के अंदर। अपने बेहोशी को संभाल कर भी, मतलब हमारे मेडिकल में कैसा होता है, समझो आपके शरीर में बहुत खून बह गया तो आप बेहोश हो जाते हो, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, आपका पल्स जो है नाड़ी वो भी मंद हो जाती है, ख़त्म सी हो जाती है, और फिर आदमी गिर जाता है, आपके आंखों धुंधला दिखता है, अंधकार दिखता है पूरा आंखों के सामने। ऐसी अवस्था में भगवान का चक्र देखकर, अभी भगवान उसको मारने वाले हैं ये देखकर झपक पड़े भगवान के चरणों में और पैर पकड़ा भगवान का, बचाओ उनको मत मारो, इसलिए इतना बड़ा चमत्कार उसका। तो कहने का तात्पर्य है कि आज वो परम करुणा अवतारी नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है। आज के दिन में जो भगवान के नाम का जप करेगा और उनके चरणों का आश्रय उनकी याचना करेगा ना, वो कृष्ण की कृपा को प्राप्त करेगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त की बिना महाप्रभु चैतन्य की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है, और जब तक महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है तब तक राधा कृष्ण के प्रति प्रेम, सेवा, नाम के प्रति रुचि नहीं पैदा हो सकती है। राधा कृष्ण की भक्ति का रहस्य, राधा कृष्ण के नाम के प्रति आसक्ति नहीं पैदा हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ा मूल जो है वो नित्यानंद प्रभु है। बलराम कृष्ण से अधिक दयालु हैं और बलराम का अवतार ये परम परम दयालु हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, इनकी महिमा कितना गाए हैं, क्या गाए हैं, जितना गाए उतना कम है। हमारा जो जीवन है ना पूरा भक्ति का, ये इनकी कृपा पर आधारित है। इसलिए जैसे अभी हम लोग, आप लोग तलासरी में रहते हो और उधर वेव जी भी वहाँ पर भी रहते हो, कुछ लोग वाड़ा में भी रह रहे हैं, ये एक्चुअली मैं सोच रहा था आते वक्त ट्रेन में कि नित्यानंद जी का ही प्रोजेक्ट है। क्या उनका प्रोजेक्ट है लाइफ में, जहाँ सबसे पतित लोग, सबसे दुर्भागी, सबसे दुखी, सबसे परेशान, ताबान वल्लही रहते हैं, वो उधर जाते हैं उनको बचाने के लिए। जो काम किसी के बस में नहीं वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। हमारे मेडिकल में कैसा होता है कि कुछ बीमारी ऐसे होते हैं ना कोई ठीक नहीं कर सकता है, उनको बोलते हैं हरे कृष्णा थैंक यू, अभी घर में जाओ, अभी डिस्चार्ज हो जाओ और भगवान के लिए प्रार्थना करो, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे लोग फिर कोई जखीम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लास्ट स्टेज वाले, कोई जिसका कोई उपाय नहीं है, ऐसे लोग जिसको कोई तार नहीं सकता है, जिनको कोई बचा नहीं सकता है, वो इतने दुखी है कि उनका दुख, उनका पाप कर्म इतना है कि दुख उनका कोई मिटा नहीं सकता है, ऐसे लोगों के पास नित्यानंद प्रभु पहुंचते हैं। दीन हीन यत चिलो हरि नाम उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाई मदाई, इनका प्रूफ है ये। ऐसा बोलते नहीं खाली प्रवचन के अंदर, उन्होंने दिखाया करके, इतने भयंकर लोगों को बचाया उन्होंने। फिर मधाई जो है ना वो शुद्ध भक्त बन गया ना, फिर वो अभी देखो जब वो भयंकर था ना तो लोग डरते थे उसके, बहुत पास भी आते नहीं थे, दूर से भागते थे और फिर भी मारते थे उनको लोग जाके दोनों। जब भक्त बन गए ना तो बड़ा पश्चाताप हो गया उनको कि हमने कितना लोगों को पीड़ा दिया, कितना भक्तों को, कितना लोगों को, ब्राह्मणों को, औरतों को, आदमियों को, बच्चों को, बुड्ढों को कष्ट दिया हम लोग ने। तो जब वो सांप जैसे थे लोग डरते थे, जब गाय जैसे बन गए तो लोग पास पास आने की हिम्मत करने लगे, फिर आके पत्थर मारने लगे, फिर गाली बकने लगे उनके लिए, क्योंकि इतना अपराध किया था उन्होंने ना, लोगों को तकलीफ तो हुआ था ना उनकी वजह से, किसी के घर जल गए थे, किसी की औरत पर रेप किया गया था, तो गुस्सा तो था ना उनको, तो लोग हिम्मत कर करके उनको पत्थर मारने लगे। और कितना देखा परिवर्तन क्या था उनका, कहां से कहां परिवर्तन हो गया मधाई का और जगाई का। मधाई मारा हुआ पत्थर फिर उठाकर मारने वालों को देते थे, बोलते थे दोबारा मारो, 50 बार मारो और 100 बार मारो, फिर भी हमारा आपके प्रति जो अपराध है वो फिटम पार्ट नहीं होगा उसका, क्योंकि हमने इतना अपराध किया आपके ऊपर, आप तो खाली पत्थर ही मार रहे हैं, मारो। ऐसे करके लोग उनको अनंत बार पत्थर मारते थे, इतना गुस्सा था लोगों के मन में उनके प्रति। जीवन भर उन्होंने वो आतंक सह लिया लोगों का। महाप्रभु को मिले, रो रो कर मिले, बोले महाप्रभु जी हमने तो बहुत अपराध किया है, बहुत अपराध किया है, इसको कोई माफी नहीं कर सकते हैं, क्या करूं मैं बताओ, क्या करूं मैं इसको अपराध से मुक्त होने के लिए। उन्होंने कहा नदी किनारे रहो और जितने वैष्णव भक्त यहाँ पर आते हैं उनको स्नान के लिए सहायता करो, उनके कपड़े धो लो, उनके कपड़े अलग से घड़ी करके रखो, स्नान करके आएंगे तो उनकी रक्षा करो, उनको कपड़े हाथ में ला के दो, जो चाहे वो कपड़ा धो लो उनका। तो मदाई ने जीवन भर वो काम किया उधर। आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कि मदाई कितने पापी थे, कितने उनके पाप का मतलब एक्सटेंट सीमा कितनी थी हमको मालूम नहीं है। वो पाप की प्रवृत्ति और पाप की जो भयंकर सीमा, असीम जो पाप था, उसके सामने इतना बड़ा परिवर्तन, ये केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से हुआ। ऐसे परम वैष्णव बन गए वो। तो हम लोग गए थे उधर मदाई के समाधि के यहाँ, और वहाँ पर भक्तों ने बहुत प्रार्थना किया। भक्तों ने प्रार्थना करने के बाद में राधानाथ महाराज जी वहाँ पर बैठ के बहुत देर प्रार्थना करते रहे। तो मैं वहाँ पर खड़ा था, बहुत सब लोग चले गए, मैं भी खड़ा था उधर, सब चले गए थे। मैं देखता रहा कि अरे महाराज जी तो अभी उठे नहीं, प्रार्थना करते रहे। बहुत देर प्रार्थना किया अकेले में बैठकर, फिर महाराज जी उठे। तो हमने जरा हिम्मत किया महाराज को पूछने का, महाराज जी आपने इतनी देर क्या प्रार्थना किया? हमारा तो प्रार्थना एक क्षण में खत्म हो गया, आपका तो बहुत देर चलता रहा, क्या प्रार्थना कर रहे थे आप? वो बोल रहे थे कि मेरे मन में वहां बैठकर ऐसा विचार आया कि मदाई जैसे व्यक्ति कर भी, व्यक्ति के ऊपर भी इतनी कृपा हो सकती है, इतने पापी व्यक्ति के ऊपर कृपा होकर उसका इतना भयंकर परिवर्तन हो सकता है और वो शुद्ध भक्त होकर ऐसा दीन हो सकता है, तो हमको भी कोई स्कोप है। ऐसा महाराज जी ने बताया मुझे कि इतनी करुणा है, मतलब इतनी करुणा है, कितनी परिसीमा वाला जो पापी है उसको भी कृष्ण प्रेम मिल सकता है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो हम भी पापी हैं सब लोग, लेकिन हमको भी थोड़ा स्कोप है, क्योंकि हम एक आदमी बैठा हुआ है, वो सब पर कृपा करता है, वो किसी के जुल्म देखता नहीं है, किसी का पाप देखता नहीं है, वो सबके ऊपर क्या कहते हैं उसको, अनकंडीशनल अहेतुकी कृपा कर देता है। तो ऐसी अहेतुकी कृपा करने वाले परम दयालु, परम कृपालु, परम करुणामयी नित्यानंद प्रभु का आज जन्मदिन है। तो मन से, वाचा से, विचार से उनकी, उनके प्रति हमको याचना करनी चाहिए और उनके चरणों का सहारा लेना चाहिए, उनको पुकारना चाहिए, हे नित्यानंद बचाओ, हमको संभालो, हमको संवारो, हमारे पाप इतने जघन्य हैं, आपने जगाई मदाई को तारा, अभी हमको भी तारो। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप पापों को देखते नहीं हो। और आचार्य लोग बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेते हुए अगर एक बार भी उसके एक बार लाइफ में अगर आंखों में से एक बूंद आंसू निकलती है उसके, तो वो नित्यानंद प्रभु की पूरी कृपा का हकदार बन जाता है। निताई जब किसी भक्त के आंखों में एक बूंद आंसू देखते हैं कृष्ण का नाम लेते हुए, वो व्यक्ति नित्यानंद की कृपा से तुरंत शुद्ध भक्त बन जाता है। तो इसलिए आज हमारे लिए बहुत सुंदर मौका है, भले रात को देर हो गए तो क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु का कृपा अभी भी अवेलेबल है। जिस दिन महान वैष्णव का या महान भगवान के अवतार का जन्मदिन होता है, उस दिन उस व्यक्ति की कृपा अधिकतम मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। इसलिए हम लोग जन्मदिन मनाते हैं ताकि हमको वो कृपा चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमको वो कृपा चाहिए कि हम वो कृपा दूसरों को बांट सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं, उनके पतित जीवन से, उनका सर्वनाश होने से उनको बचा सकते हैं। इसलिए हम इनका आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं। हमारे इस्कॉन के अंदर वो लादिनी माता जी थी, और ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने नित्यानंद जी के ऊपर बहुत अपना जीवन समर्पित किया था। और लादिनी माता जी ने अपने जीवन में बताया भी था भक्तों को कि आपको अगर सही रूप में, अगर कृष्ण की भक्ति करनी है, आपको सही रूप में भगवान कृष्ण पर प्रेम करना आप चाहते हो, तो नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण कर लो। जब आप वो करोगे तब आपके जीवन में अनायास, जो बहुत कठिन बात है, जो बहुत मुश्किल बात है, जो बहुत नामुमकिन जैसी है, वो बात जो है बड़ी आसान होकर आपके जीवन में प्रवेश करेगी, वो है कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम। तो बोलो नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद महाजन की, सृष्टि गौर निथाई की। आचार्य बताते हैं कि जय जय नित्यानंद, जय जय गौरांगा। बोलो ऐसे जो लोग बोलते हैं, कृष्ण प्रेम उनके पीछे पीछे भागते हुए आता है। जो लोग गौरांग और नित्यानंद प्रभु का नाम पुकारते हैं, कृष्ण प्रेम स्वयं दौड़ते हुए उन भक्तों के पीछे भाग भाग के आता है। तो और क्या होना चाहिए बताओ, इससे अधिक कृपा और क्या होना चाहिए? आपको तो केवल नाम लेना है। निताई गौर प्रेमानंदे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टाइमली आपका, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।